का था, रूह वही रूप नया।
छलावा के पहले भाग में आपने सुना, एक सीरियल किलर लगातार लोगों को बाईं आंख में सुआ घोंक कर मारता चला जा रहा है और पुलिस के हाथ नहीं लग रहा। मोहिते और डिटेक्टिव बख्शी ने निष्कर्ष निकाला कि ये आदमी उनमें से ही कोई एक है। लेकिन ये छलावा आखिर चाहता क्या है, क्या कारण है लोगों को अपना शिकार बनाने का, जानने के लिए सुनिए छलावा का दूसरा भाग। अगले दिन कमिश्नर सुबोध कुमार के ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। बख्शी और मोहिते कल की घटना के बारे में सुबोध कुमार से बातचीत कर रहे थे। पुलिस स्टेशन में घुसकर हत्या करने के बाद भी छलावे के पकड़ में ना आने के कारण पुलिस विभाग की भारी किरकिरी हो रही थी। बातचीत के दौरान ही बख्शी चौकन्ना हो गया और दबे पांव दरवाजे की ओर बढ़ा। कमिश्नर ने कुछ बोलना चाहा तो बख्शी ने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और जाकर झटके से दरवाजा खोल दिया। अरब महासागर की तेज हवा जोरों से कमरे में घुस आई, पर बाहर उसके अलावा कोई नहीं था। बख्शी ने दरवाजा बंद किया और आकर चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कमिश्नर और मोहिते प्रश्नवाचक दृष्टि से उसे देख रहे थे। कोई दरवाजे पर था, हो सकता है छलावा हो, बख्शी ने मानो बम फोड़ा। फिर रुमाल से मुंह पोंछता हुआ आगे बोला, यह बात मैं दावे से कह सकता हूं कि छलावा हमारे बीच का ही कोई शख्स है। हम उसे नहीं जानते, पर वो हम सबके साथ है। आपको जानता पहचानता है और मौका मिलते ही वार करता है। मैं फिर कहता हूं कि यहां न मैं सुरक्षित हूं, न मोहिते और न ही आप। इतना कहते हुए बख्शी ने उंगली तलवार की तरह कमिश्नर की दिशा में उठाई तो वे हड़बड़ा से गए और मोहिते तो बाकायदा रुमाल निकालकर पसीना पोंछने लगा। फिर दोनों कमिश्नर के ऑफिस से निकले और बख्शी अपनी कार में बैठकर रवाना हो गया। मोहिते अपनी ऑफिस में कुर्सी पर बैठा सोचता रहा कि अगर छलावा इसी परिसर में है तो हो सकता है विलास के कमरे के ग्राइंडर का उपयोग वो भी सुआ घिसने के लिए करता हो। आखिर वहां तो कोई भी पहुंच सकता है। विलास भले ही अवैध हथियार के मामले में लिप्त था, पर उसकी मौत का मोहिते को सख्त अफसोस था। छलावे के लिए उसके मन में सख्त प्रतिशोध के भाव पैदा हुए। अचानक तभी परिसर में फिर बख्शी की कार का आगमन हुआ। उत्सुकतावश मोहिते बाहर निकल आया। उसने देखा कि बख्शी एक हाथ से कार चला रहा था और उसने दूसरा हाथ अपने गाल पर दबा रखा था, जिसमें उसने सफेद रुमाल पकड़ा था जो कुछ कुछ लाल होता जा रहा था। कार से उतरते ही बख्शी ने कहा, डॉक्टर बुलाओ। फौरन पुलिस डॉक्टर हाजिर हुआ और उसने बख्शी के गाल पर लगी चोट का मुआयना किया और घबराने की बात नहीं है ऐसा कहकर मरहम पट्टी कर दी। उसके चले जाने के बाद बख्शी ने एक सुआ निकालकर मोहिते की मेज पर टन से रख दिया और बोला, ये छलावे का सुआ है। मोहिते हैरान होकर उसे देखने लगा। बख्शी बोला, अगले सिग्नल पर उसने मुझ पर वार किया था, पर संयोग से मैं बच गया और उसका सुआ भी ले आया। मोहिते मुंह बाए सुन रहा था। बख्शी ने कहा, अगले सिग्नल पर जैसे ही मैंने कार खड़ी की, मेरे पीछे से एक मोटरसाइकिल सवार आया और उसने मेरे दरवाजे पर ठक ठक की। जैसे ही मैंने कांच उतारा, उसने बिजली की तेजी से सुआ मेरी आंख में भोंकने की कोशिश की, पर मैंने झटके से सिर हटा लिया तो वार ओछा पड़ा और गाल पर खरोंच आई। साथ ही मेरे हाथ के झटके से उसका सुआ मेरी गोद में गिर पड़ा। जब तक मैं उतर सकूं वो तेजी से बाइक घुमाकर भाग निकला। अब तुम इस सुए के फिंगरप्रिंट उठवा लो, अंगूठे का तो मिलेगा नहीं, शायद उंगलियों का मिल जाए। आप कैसा कह सकते हैं अंगूठे का नहीं मिल सकता? इस पर बख्शी मुस्कुराया और बोला, सुए को मजबूती से हथेली में पकड़कर देखोगे मोहित, अंगूठा बाहर ही रहता है। पर अभी इसे मत पकड़ना, पहले निशान उठवाओ। मोहिते ने सहमति में सिर हिलाया। वाकई सुए पर चार उंगलियों के ही निशान थे। अब उन निशानों को मिलाने के लिए लाखों निशानों को खंगालने का काम करना था, जो भूसे की ढेरी में से सुई ढूंढने जैसा काम था। हाँ, अगर कोई निशान पहले से उपलब्ध होते तो काम आसान होता, बख्शी ने कहा। पहले चौकी में और आसपास मौजूद हर किसी के निशान मैच करवाओ, कोई नतीजा जरूर निकलेगा। फिर बख्शी ने पूछा, कौन कौन हवलदार इस समय चौकी से बाहर हैं? और किस किस के पास बाइक है उनकी लिस्ट लाओ। कुल 14 हवलदारों के नाम आए। बख्शी ने मोहिते से कहा कि हड़बड़ी में वो छलावे की कदकाठी का कोई अंदाजा नहीं लगा सका, फिर भी कल इन सबको बुलाना, मैं शिनाख्त करने की कोशिश करूंगा। मोहिते के हाँ कहने पर बख्शी रवाना हो गया और मोहिते फिर अपनी कुर्सी पर बैठकर गहन सोच में डूब गया। थोड़ी देर बाद उसने अपने सामने पड़े कागज पर कुछ उल्टे सीधे स्केच बनाने शुरू किए। फिर उन्हें लेकर वो सीधा कमिश्नर साहब के पास गया और वे दोनों किसी गहन वार्तालाप में डूब गए। उनकी खुसुर फुसुर और कोई नहीं सुन पाया, पर जब मोहिते वहां से निकला तो उसकी आंखें चमक रही थी और उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय के भाव थे। कमिश्नर के साथ हुई बातचीत के दौरान मोहिते ने अपने स्केच उन्हें दिखाए, जिन्हें अपने हाथों में लेकर उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा था। दोनों के बीच गहन विचार विमर्श के दौरान मोहिते ने वो कागज सावधानीपूर्वक सहेज लिया था और कमिश्नर के कार्यालय से निकलते ही सीधे फिंगरप्रिंट्स डिपार्टमेंट में गया। वहां उसके एक्सपर्ट शैलेश पांडे से मिला, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था पर उसके दादाजी आजादी के बाद मुंबई आ गए थे और उसके पिता का जन्म यहीं हुआ था। इस प्रकार अब वो मुंबई का ही बाशिंदा था और उसका उत्तर प्रदेश आना जाना कम ही हो पाता था। जब से बख्शी ने हर किसी पर शक करने का आइडिया सरकाया था, तब से मोहिते अलर्ट हो गया था। उसने स्केच दिखाने के बहाने कमिश्नर साहब की उंगलियों के निशान भी ले लिए थे और उनकी जांच के लिए लैब में आ गया था। हेलो पांडे, कैसा है? मोहिते बोला। जिंदा है आपके राज में सर, पांडे हंसता हुआ बोला। वो काफी खुश मिजाज इंसान था। मोहिते ने भी मुस्कुराते हुए उसकी ओर एक कागज बढ़ा दिया। उसे अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि पांडे अपने काम में बड़ा दक्ष था। उसने सावधानी से कागज मोहिते के हाथ से ले लिया और उस पर फिंगरप्रिंट्स उतारने का उपक्रम करने लगा, लेकिन तुरंत ही वो सिर उठाकर मोहिते की ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर विस्मय के भाव थे। मोहिते ने पूछा, क्या हुआ पांडे? अचानक पांडे ने जोरदार ठहाका लगाया और बोला, आज 1 अप्रैल तो नहीं है मोहिते साहब, तो आप मुझे मूर्ख क्यों बना रहे हैं? अरे ये कागज तो बिल्कुल कोरा है। मोहिते को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके सामने कमिश्नर साहब ने कागज को पकड़ा था तो उनकी उंगलियों के निशान कागज पर क्यों नहीं आए? ये बात उसकी समझ से बाहर थी। वो सिर खुजाता हुआ अपने ऑफिस में आ बैठा। तब तक बख्शी आ पहुंचा। मोहिते ने उसे ये सारा किस्सा कह सुनाया। बख्शी बोला, वेरी गुड, ये हुई ना बात, अब तुम सही लाइन पर हो। चलो कमिश्नर साहब के पास चलते हैं और सीधे सीधे उंगलियों की छाप मांगते हैं। जांच होनी ही है तो सबकी हो, और मैं और तुम भी अपनी उंगलियों की छाप देंगे। मोहिते खुश हो गया। वो कमिश्नर से सीधे फिंगरप्रिंट्स तो मांग नहीं सकता था। अगर बख्शी कह रहा था तो उसका काम सुगम हो जाता था। वे सीधे कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे और बख्शी ने कमिश्नर से कहा, सर मेरा मानना है कि कातिल हम में से ही एक है और हमारे पास उसके फिंगरप्रिंट्स हैं, तो मैं चाहता हूं कि हर किसी के फिंगरप्रिंट्स लिए जाएं और उनका मिलान हो। कोई इससे ना छूटे, न मैं न आप, क्या कहते हैं? बहुत अच्छा ख्याल है, सुबोध कुमार मुस्कुराते हुए बोले और उन्होंने दराज खोलकर एक सफेद कागज निकालकर टेबल पर रख दिया, जिस पर नीली स्याही में पूरी हथेली की छाप बनी हुई थी। कमिश्नर आगे बोले, मैं खुद यही सोच रहा था और अभी मैंने अपनी हथेली की छाप ली और मोहिते को बुलाने ही वाला था कि तुम आ गए। वहीं दूसरे कागज लेकर मोहिते और बख्शी ने भी अपनी उंगलियों की छाप दी और बाहर निकल आए। फिर चौकी में मौजूद एक एक आदमी के फिंगरप्रिंट्स लिए गए और मोहिते ने खुद वे कागज ले जाकर पांडे के सुपुर्द किए और आतुरता से परिणाम की प्रतीक्षा करने लगा। इधर बख्शी ने 14 पुलिस वालों को उनकी मोटरसाइकिलों के साथ बुलवाया था और वे सब पुलिस ग्राउंड में खड़े थे। मोहिते के साथ वहां पहुंचकर बख्शी ने कड़ी जांच की, उनसे मोटरसाइकिल चलवा कर देखी और भी ऐसे प्रयोग किए, पर नतीजा सिफर रहा। शाम को फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट की भी रिपोर्ट आ गई। एक भी निशान सुए के निशानों से मैच नहीं करते थे। मोहिते माथा पकड़कर बैठ गया। वो जिस रास्ते पर चलने की कोशिश करता था वही बंद मिलता था, पर अपनी ट्रेनिंग में सतत प्रयास का पाठ उसने सीखा था तो हार कर बैठना उसके स्वभाव में नहीं था। अचानक उसके दिमाग में एक बात आई कि फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट शैलेश पांडे अगर छलावा हो तो उसकी उंगलियों के निशान भी तो जांचे जाने चाहिए। और अगर वो ही छलावा हुआ तो क्या जरूरी है कि वो सही रिपोर्ट देगा? उसने पांडे के प्रिंस लेकर अपने हिसाब से जांचने का फैसला किया और अपने सिपाही ज्ञानेश्वर को जाकर शैलेश के फिंगरप्रिंट्स ले आने को कहा। 5 मिनट बाद ज्ञानेश्वर खाली हाथ लौटा और मुंह लटका कर बोला, पांडे सर के फिंगरप्रिंट्स की अब कोई जरूरत नहीं है मोहिते साहब, उनका तो खून हो गया है, छलावे ने उनकी आंख में भी सुआ घोंप दिया है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट शैलेश पांडे अपनी मेज पर सिर रखे पड़ा हुआ था, मानो सो रहा हो। जब ज्ञानेश्वर उसके फिंगरप्रिंट्स लेने पहुंचा तब भी वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। उसने उसे हिलाना चाहा तो देखा कि उसकी आंख में सुआ घोंपा हुआ है, तो उसने बिना कोई छेड़छाड़ किए जाकर मोहिते को ये रिपोर्ट दी। फौरन मोहिते ने आकर जांच शुरू की। बख्शी को भी सूचित किया गया तो वो भी आ गया। पांडे के सामने कई फिंगरप्रिंट्स के नमूने पड़े थे। बगल में एक आतिशी शीशा पड़ा हुआ था। पांडे को देखकर लगता था मानो वो काम करते करते थक जाने के कारण टेबल पर सिर रख कर सो गया हो, पर कागज पर इसे खून को देखकर हृदय कांप जाता था। लगता है ये हाथ में कोई कागज लिए सिर के ऊपर उठाकर ध्यान से मुआयना कर रहा था कि इतने में ही छलावे ने इस पर ऐसा वार किया कि क्षण भर में इसकी मौत हो गई, बख्शी बोला, तो मोहिते भी सहमति में सिर हिलाने लगा। आगे बख्शी ने कहा, मोहिते इन सभी फिंगरप्रिंट्स को उठवाकर बारीकी से इनकी जांच करवाओ, जिससे ये पता चले कि कहीं पांडे को छलावे के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया था जिसके कारण उसने इसे मार दिया हो। इतने में एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और उसने ऐसी खबर दी जिसने वहां भूकंप ला दिया। छलावा ने हाउस ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और वाधवा ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के मालिक नारायण वाधवा का खून कर दिया था। वे अपने शयन कक्ष में आरामदायक बिस्तर पर मृत पाए गए थे। ये खबर पाते ही मोहिते के सिर पर मानो पहाड़ टूट पड़ा और बख्शी के चेहरे पर भी भारी विस्मय के भाव थे। नारायण वाधवा बहुत नामचीन हस्ती था। स्टॉक एक्सचेंज उसकी इच्छा से चढ़ता उतरता था। उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि जब वो किसी विषय पर बोलता तो कभी कभी उसकी गूंज संसद तक भी सुनाई देती थी। बहुत हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण वाधवा के बंगले पर पुलिस की भारी भीड़ थी। बख्शी और मोहिते ने पहुंचकर अपना काम संभाल लिया। नारायण वाधवा 55 साल का हट्टा कट्टा व्यक्ति था जो इस उम्र में भी घंटों टेनिस खेलता था। नीलिमा बाहरी से उसने प्रेम विवाह किया था पर दोनों की ज्यादा दिन पटी नहीं थी। फिर तलाक के केस में बख्शी की मदद से वाधवा नीलिमा से मुक्त हो गया था, पर अब दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। तलाक के बाद वाधवा ने फिर विवाह नहीं किया था क्योंकि वो एक ही गलती बार बार दोहराने में विश्वास नहीं करता था। वैसे भी उसका मानना था कि मनपसंद डिश खाने के लिए घर में ही रेस्टोरेंट खोलना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं था। बख्शी मोहिते के साथ वाधवा के आलीशान शयन कक्ष में दाखिल हुआ। चारों तरफ ऐश्वर्य फैला हुआ था। अपने विशाल गोल पलंग पर रेशमी लिहाफ ओढ़े वाधवा चित्त पड़ा हुआ था, जिसकी दोनों आंखें बंद थीं, पर बाईं आंख में सुआ घुंपा हुआ था और उसमें से रक्त बहकर सफेद लिहाफ और चादर को भिगोकर लाल कर चुका था। लाश को देखकर लगता था कि उसे मरे हुए कई घंटे बीत चुके हैं। अचानक कमिश्नर सुबोध का आगमन हुआ। कमिश्नर के चेहरे पर सख्त चिंता के भाव थे। उसने बख्शी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब तो छलावे ने हद कर दी है, दिल्ली भी वाधवा साहब के कत्ल से हिल उठी है, जल्दी कुछ करो बख्शी। जवाब में बख्शी ने जो कहा उसे सुनकर सुबोध कुमार और मोहिते के कानों में मानो बम के धमाके होने लगे। वो शांति से बोला, ये कत्ल छलावे ने किया ही नहीं है सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये तो छलावे के आतंक का लाभ उठाकर किसी और ने अपनी रोटी सेंक ली है। मोहिते और कमिश्नर मुंह बाए उसे देखते रहे और बख्शी बोला, सबसे पहली बात तो ये कि ये सुआ उन सुओं से बिल्कुल अलग है जिनसे अभी तक कत्ल हुए हैं। दूसरी बात, इस सुए का मार्क घिसा नहीं गया है। वाधवा साहब की लाश पूरी तरह बंद एयर कंडीशनड कमरे में हुई है। अगर छलावा हत्यारा है तो वो कमरे में घुसा कैसे? सुबह जब नौकरानी ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की और वाधवा साहब नहीं उठे, तब दरवाजा तोड़ा गया और कत्ल का पता चला। इससे ये सिद्ध होता है कि यह काम किसी ऐसे व्यक्ति का है जिसके पास इस कमरे की चाबी थी। उसने चुपचाप आकर दरवाजा खोलकर नींद में ही इनकी आंख में सुआ घोंपा और निकल गया। दरवाजे पर ऑटोमेटिक नाइट लैच लगा हुआ है, तो केवल खींच कर बंद कर देने से यह भीतर से बंद हो गया। कमिश्नर ने सहमति में सिर हिलाया। उसके चेहरे पर बख्शी के लिए प्रशंसा के भाव थे। बख्शी आगे बोला, कातिल कोई अनाड़ी शख्स है जिसे ये सब बारीकियां मालूम नहीं थी कि छलावा मार्क घिसे हुए सुए से कत्ल करता है, और वो कोई भूत प्रेत नहीं जो बंद कमरे में कत्ल करके हवा हो जाए। केवल सुए से बाई आंख फोड़ कर कत्ल कर देने से ये काम छलावे का नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि सुए पर असली कातिल के फिंगरप्रिंट्स भी हो सकते हैं। बाद में जैसा बख्शी ने कहा था वही हुआ। सुए पर उंगली के निशान बरामद हुए जो बख्शी द्वारा बरामद किए गए सुए से बिल्कुल अलग थे। फिर बड़ी तेजी से वाधवा के आसपास के सभी लोगों की जांच की गई तो कातिल बड़ी आसानी से गिरफ्त में आ गया। वाधवा की भूतपूर्व पत्नी नीलिमा वाधवा, जो तलाक के बाद फिर अपने को नीलिमा बाहरी लिखने लगी थी, और उसके पास वाधवा के बेडरूम की चाबी अभी तक थी। कुछ दिन पहले तक इस बंगले की मालकिन होने के नाते उसे यहां के स्याह सफेद के बारे में सब पता था। वो अपने तलाक के सुलह नामे की शर्तों से पूरी तरह असंतुष्ट थी और हसद की आग में जल रही थी। उसने अपने पड़ोस के दुकानदार से यह सुआ खरीदा और रात 12 बजे चुपचाप आकर सोए पड़े अपने भूतपूर्व पति की आंख में भोंक दिया। दुकानदार ने बाद में नीलिमा को सुए के खरीदार के रूप में निर्विवाद रूप से पहचान लिया था। शहर में छलावे का आतंक देखते हुए उसने बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की थी, पर कानून की गिरफ्त में आ गई। अगले दिन के अखबार शिव कुमार बख्शी के कारनामे से रंगे हुए थे, जिसने 24 घंटे के भीतर नारायण वाधवा के कातिल को कानून के शिकंजे में खड़ा कर दिया था। पर छलावा अभी आजाद था और मुंबई की फिजा अभी भी भारी बनी हुई थी। छलावा पुलिस विभाग के लिए इतना बड़ा सरदर्द बन गया था कि लगभग पूरा महकमा सब कामकाज छोड़कर छलावे को ही तलाश कर रहा था। मोहिते अपने ऑफिस में बैठा आगे की रणनीति बना रहा था। उसके दिमाग में काफी उथल पुथल मच रही थी। शाम गहरा गई थी और वो घर जाने को तैयार था। अभी अभी बख्शी यहां से निकला था तभी कमिश्नर साहब की कार गेट से निकली। मोहिते ने झपट कर अपनी बुलेट की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। थोड़ी दूर जाकर उसने अपनी बुलेट एक कोने में पार्क कर दी, अपने पुलिस ड्रेस के ऊपर एक रेनकोट पहन लिया, उसके कॉलर खड़े कर लिए और एक चिन गार्ड वाला हेलमेट पहन लिया जिससे उसका चेहरा देख पाना असंभव हो गया था। फिर उसने वहीं बगल में खड़ी एक एक्टिवा उठाई जो उसकी पत्नी की थी और जिसे उसने यहां इसी काम के लिए खड़ा रख छोड़ा था, और एक दिशा की ओर चल दिया। रास्ते में कमिश्नर सुबोध कुमार का बंगला आया। उसकी बगल में एक पेड़ के नीचे उसने एक्टिवा खड़ी कर दी, पर उस पर से उतरे बिना इंतजार करता रहा। समुद्र की ओर से आ रही ठंडी हवा उसे बहुत भली लग रही थी। ये वर्ली सी फेस का शानदार इलाका था जहां मुंबई के उच्च वर्ग के लोगों के बंगले थे। काफी फिल्मी हस्तियां भी यहीं रहती थीं। बख्शी भी यहीं एक अपार्टमेंट में रहता था। मोहिते एंटॉप हिल की पुलिस लाइन में एक दो कमरे के ऐसे मकान में रहता था जिसकी छत टपकती थी और दीवारों पर पेंट उखड़ा हुआ था। उसने एक ठंडी सांस भरी। जान की बाजी लगाकर 24 घंटे ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों की निजी जिंदगी काफी कष्ट भरी होती है। रात हो चुकी थी। अचानक एक साया मोहिते के पास आ खड़ा हुआ। मोहिते ने ध्यान से उसे देखा और केवल सहमति में सिर हिला दिया। आंखों आंखों में कुछ इशारे हुए और वो साया सड़क की दूसरी ओर चला गया और एक पेड़ के पीछे छुपकर प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद बंगले की बगल से एक और साया निकला और एक दिशा को तेजी से चल दिया और थोड़ी दूर पर पार्क एक इको स्पोर्ट कार में बैठकर रवाना हो गया। सामने पेड़ के पीछे छिपा साया दौड़कर मोहिते के पास आया और उसकी एक्टिवा लेकर इको स्पोर्ट के पीछे लग गया। इधर मोहिते पैदल ही विपरीत दिशा की ओर भागा। उसे बहुत जल्दी कहीं किसी चीज की तलाशी लेनी थी। थोड़ी ही देर में मोहिते एक बड़े से कमरे में घुसा हुआ चीजें उलट पलट रहा था। कई दराजें खोलने के बाद एक बड़ी सी चीज में उसने अपनी मनवांछित चीज पा ली। उसने फौरन अपनी तलाश बंद कर दी और बाहर निकल आया। फिर उसने मोबाइल फोन पर कॉल करके सिर्फ इतना कहा, काम हो गया सर, और मोबाइल ऑफ कर दिया। अगले दिन पुलिस स्टेशन में काफी गहमा गहमी दिखाई पड़ रही थी। मुख्यमंत्री जी वहां के दौरे पर आने वाले थे, तो हर चीज दुरुस्त की जा रही थी, हर चीज को चमकाया जा रहा था। बाद में मुख्यमंत्री जी आए और उन्होंने कमिश्नर से मुलाकात की और छलावे के बारे में पूछा। कमिश्नर ने जल्द से जल्द उसके पकड़े जाने की संभावना जताई, तो मुख्यमंत्री जी ने जल्दी जल्दी कुछ कहा, फिर कुछ निर्देश देकर विदा हो गए। दोपहर बाद पुलिस स्टेशन अलसाया सा लग रहा था। मुख्यमंत्री के दौरे की तनातनी अब खत्म हो गई थी। इतने में बख्शी अपनी सदाबहार मुस्कुराहट लिए वहां हाजिर हुआ। मोहित ने उसका अभिवादन किया, फिर तुरंत बगल में पड़ी प्लास्टिक की एक बड़ी सी नीली थैली उठाई और बख्शी को साथ लेकर कमिश्नर के कक्ष में दाखिल हुआ। कमिश्नर सुबोध कुमार एक फाइल पर नजरें गड़ाए बैठे थे। मोहित ने उन्हें सैल्यूट किया और बैठने का संकेत पाकर बैठ गया। बख्शी भी औपचारिक अभिवादन के बाद बैठ गया। कहो मोहित, क्या बात है? कमिश्नर ने पूछा। सर, हम छलावे को पकड़ने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं सर, बस आपका सहयोग चाहिए। मोहिते कमिश्नर की आंखों में झांकता हुआ बोला। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो, कमिश्नर ने कहा। जवाब में मोहिते ने नीली थैली में हाथ डालकर एक चमड़े का काला बैग निकाला और कमिश्नर की टेबल पर रखते हुए पूछा, क्या आप इसे पहचानते हैं सर? वातावरण में ब्लेड की धार जैसा पैना सन्नाटा पसर गया। कमिश्नर ने एक क्षण के लिए बैग को देखा, फिर उनकी नजरें बख्शी के चेहरे पर जम गईं, जो अचानक राख की तरह सफेद हो चुका था, मानो उसका एक एक बूंद रक्त ने चुर चुका हो। मोहिते भी अपलक उसी को देख रहा था। उसने अचानक उठकर बैग टेबल पर उलट दिया। उसमें से कई बर्फ काटने के सुए और एक छोटा सा इम्पोर्टेड ग्राइंडर गिर पड़े। किसी पिंजरे में कैद हिंसक पशु की तरह एक बार बेचैन होकर बख्शी ने इधर उधर ताका, फिर चुपचाप बगल से रिसीवर निकाल ली और कमिश्नर पर तान दी। अब बख्शी किसी प्रेत की तरह लग रहा था। मोहिते चुपचाप बख्शी को देख रहा था। अचानक बख्शी ने खुद को संभाल लिया। उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी और उसने मोहिते से पूछा, कब घुसे? मोहिते बोला, कल रात को, जब आप अपनी इको स्पोर्ट्स कार में बैठकर नया शिकार ढूंढने निकले थे ना सर, तब। मोहिते के शब्द आदर सूचक जरूर थे, पर आज उनमें दुनिया भर की घृणा झलक रही थी। सूझा कैसे? बख्शी ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह बिल्कुल सामान्य हो चुका था। खुद थे? मोहिते मानो बम की तरह फूट पड़ा। जब तूने खुद पर छलावे के हमले की झूठी कहानी घड़ी थी ना, तभी मेरे को शक हो गया था। जब तूने आकर कहा कि सिग्नल पर छलावे ने तेरे ऊपर आक्रमण किया है, तब मैंने गौर से देखा, तेरी बाई आंख के नीचे खरोंच थी, जबकि सुए पर दाएं हाथ की उंगली के निशान थे। तब मैंने कागज पर स्केच बनाकर जांचा और पाया कि किसी राइट हैंड ड्राइव कार की बगल में खड़े होकर कोई बाइक वाला दाएं हाथ से चालक के गाल पर वार कर ही नहीं सकता, तो मैं समझ गया कि तू छलावा है। बख्शी ने एक ठहाका लगाया और बोला, वाह मेरे देसी शर्लक होम्स, वाह। फिर मोहित आगे बोला, फिर मैंने वो स्केच लेकर जाकर कमिश्नर साहब को दिखाया तो वो भी चौंक पड़े और मेरे आगे की योजना को कार्य रूप देने के लिए राजी हो गए। मैंने जानबूझकर एक कोरा कागज ले जाकर शैलेश पांडे को जांच के लिए दिया और जब उस पर कोई निशान नहीं मिले, तब मैंने तुम्हारी सहायता से कमिश्नर साहब की उंगलियों के निशान लिए, जबकि वो सारी कवायद केवल तुम्हारी उंगलियों के निशान के लिए थी। मैं चाहता था कि ऐसी परिस्थिति बना दूं कि तुम उंगलियों का निशान देने को मजबूर हो जाओ, पर जब सुए की उंगलियों के निशान तुम्हारी उंगलियों के निशानों से मैच नहीं हुए तो मैं हताश हो गया। आखिर उस सुए पर किसकी उंगली के निशान है, बख्शी साहब? बख्शी एक ऐसी मुद्रा बनाकर बैठा था मानो कोई मनोरंजक नाटक देख रहा हो। बोला, वो मेरे एक पड़ोसी कॉलेज के विद्यार्थी की उंगलियों के छाप हैं, जिसे एक प्रयोग का हिस्सा बनाकर मैंने वो हासिल किए थे। बख्शी फिर हंसते हुए बोला, देखो अब इस कमरे से तुम्हारी और कमिश्नर साहब की लाश बाहर जाएगी, इसीलिए अपने सारे डाउट क्लियर कर लो। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों की आत्मा मरने के बाद भी भटकती रहे। पर एक बात तो बताओ, तुम्हें ये बैग कैसे मिला? मोहिते बोला, मैंने कल रात तुम्हारे घर में घुसकर तलाशी ली। मैंने कल शाम ही कमिश्नर साहब से साथ देने की गुजारिश की थी, जिसे उन्होंने मान लिया, क्योंकि मैं अपनी योजनाओं में और किसी को शामिल नहीं करना चाहता था। तो कल ये तुम्हारे पीछे एक्टिवा लेकर घूमते रहे और मैंने तुम्हारे मकान की तलाशी लेकर ये पापों से भरा बैग बरामद कर लिया। बख्शी बोला, मैंने कल सफेद एक्टिवा को अपने पीछे लगा देख लिया था, इसीलिए आज के अखबार में किसी कत्ल की खबर नहीं आई। मैं निरुद्देश इधर उधर घूम घाम कर लौट आया, पर अगर मुझे मालूम होता कि ये हमारे आदरणीय कमिश्नर साहब हैं, तो आज पेपर के मुख्य पृष्ठ पर इनकी सुआ घूपी तस्वीर होती। फिर एक जोरदार ठहाका लगाया। वह परिस्थितियों का आनंद लेता सा महसूस हो रहा था। उसके सामने उसके दो शिकार निहत्थे बैठे थे और उसके हाथ में एक लोडेड रिवॉल्वर थी। उसका पलड़ा भारी था। अभी तक शांत कमिश्नर सुबोध कुमार बोले, तुम इतने सफल और प्रसिद्ध हो शिव कुमार, जिंदगी का आनंद ले रहे हो, तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी?
तेरे कारण हरामजादे, तेरे कारण।
पहली बार बख्शी के स्वर में तेजी के साथ साथ किंग कोबरा से भी ज्यादा जहर उतर आया था।
तुझे तो शायद याद भी नहीं होगा, जिस साल तूने आईपीएस की परीक्षा पास की थी, उसी साल एक और लड़का तुझसे भी ज्यादा योग्य और तेज था, जिसका नाम शिव कुमार था। पर बड़े बाप की औलाद होने के नाते और पैसों के दम पर हर जगह तू सिलेक्ट हुआ और उसे दरकिनार कर दिया गया। तो उसने खींच कर पुलिस में भर्ती होने का विचार ही त्याग दिया और प्राइवेट जासूस बनकर झंडे गाड़ दिए। इस दौरान उसने कदम कदम पर पुलिस की भी मदद की। पर जब तू मुंबई का कमिश्नर बनकर आ गया, तो मेरे जख्म फिर हरे हो गए। मेरी छाती पर सांप लौटने लगा। मैंने निश्चय किया कि अब मुंबई पुलिस की नाक में दम करके ऐसा हाहाकार मचाऊंगा कि तुझे तेरे पद से हटा दिया जाएगा। जिस कुर्सी पर तू काबिज है वो मेरी है सुबोध कुमार, मेरी। ईर्ष्या की इस आग में तूने बीसियों निर्दोषों को मार डाला बख्शी,
मोहिते बोला।
आखिर निर्दोष सेल्समैन और अस्पताल के चौकीदार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था और क्या गलती थी शैलेश पांडे की?
एक जहरीली मुस्कान फिर बख्शी के चेहरे पर नाचने लगी। वो बोला,
मैं तुम लोगों को तिगनी का नाच नचाना चाहता था मोहिते। जब हम दोनों अस्पताल के मॉर्ग में सेल्समैन की लाश का मुआयना करने गए, तब मैंने धमकी वाला कागज घर से ही बना लिया था, जो मुआयने के बहाने उसकी पीठ पर रख दिया, और वातावरण की नमी के कारण वो खुद ब खुद लाश से चिपक गया। फिर मैंने चौंकने का बहाना किया।
फिर मैंने तुम्हारे चेहरे को देखकर छोड़ूंगा नहीं शब्द कहा था।
वो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए था, छलावे के लिए नहीं।
और देख लो, आज तुम दोनों मेरे रहमो करम पर हो।
चौकीदार को कैसे और क्यों मारा?
मोहिते यूं बोला मानो उसकी आखिरी बात सुनी ही ना हो। मैं पुलिस विभाग को अपने आतंक के साए तले सिसकता देखना चाहता था मोहिते। मेरी दिली तमन्ना थी कि छलावे के नाम से तुम सबकी पतलून गीली हो जाए। तभी मैं टॉयलेट की खिड़की से बाहर निकला और सामने ही सीढ़ियों पर चौकीदार मिल गया। मुझे खिड़की से निकलता देख उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जिनमें से बाई वाली को मैंने तुरंत सुए का प्रसाद दिया और खिड़की से भीतर दाखिल होकर तुम्हारे साथ मेन डोर की ओर चल दिया। मेरी उससे कोई साथी दुश्मनी नहीं थी ना, बिल्कुल नहीं। उससे ही क्या, मेरी तो किसी से भी जाती रंजिश नहीं थी। मैं सिर्फ पुलिस की खटिया खड़ी करना चाहता था, इसीलिए मैं फिंगरप्रिंट्स विभाग में गया। तो पाया कि शैलेश दीन दुनिया से बेखबर अपने काम में मग्न था। वैसे मुझे उससे कोई खतरा नहीं था, क्योंकि किसी सुए पर मेरी उंगलियों के निशान थे ही नहीं। पर वहां सुनसान देखकर मैंने उसे सुआ मार दिया। मुझे सिर्फ आतंक फैलाने से मतलब था मोहिते। विलास राहुरकर भी इसी वजह से मारा गया। जब वो खिड़की के पास खड़ा मदद के लिए इधर उधर ताक रहा था ना, तभी मैंने वहां पहुंचकर
उसे सुआ घोंप दिया और चुपचाप आकर तुम्हारे ऑफिस में बैठ गया।
मुझे हर बात पहले से पता रहती थी, इसलिए मैं तुम लोगों से चार कदम आगे रहता था। मोहिते,
सही कहा बख्शी,
मोहिते दांत पीसता हुआ बोला।
तभी तो तुमने आनन फानन में वादवा के कत्ल से छलावा को बरी कर दिया, क्योंकि तुमसे बेहतर कौन जानता था कि उसका कत्ल छलावा ने किया ही नहीं और किसी ने किया था। तभी जब उसके कत्ल की खबर आई, तब तुम्हारे चेहरे पर मैंने भारी अचरज के निशान देखे, पर भांप नहीं सका क्यों।
गर्दन हिलाकर बख्शी यूं मुस्कुराया मानो कोई पुरस्कार ग्रहण कर रहा हो। बख्शी, एक बात बताओ, तुमने उस दिन मेरे ऑफिस के बाहर किसी के होने की बात क्यों कही थी?
अरे वो तो सिर्फ आप लोगों को डराने का नाटक था। मैं चाहता था हर घड़ी आतंक का साया पर मंडराता रहे सुबोध कुमार जी।
अब बोलो ऊपर कौन जाएगा? अचानक विषय बदलते हुए बख्शी ने रिवॉल्वर हिलाई, पर मोहिते लापरवाही से बोला,
बख्शी अब तू अपने बनाने वाले को याद कर ले, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तुझे फांसी होगी, मैं तुझे गिरफ्तार करता हूं।
बख्शी ने जोरदार ठहाका लगाया और उठकर रिवॉल्वर मोहिते के माथे से सटा दी और उसकी उंगली ट्रिगर पर कस गई। फिर एक जोर का फायर हुआ। बख्शी की बाईं आंख में काफी बड़ा छेद हो गया था और उसमें से रक्त का फव्वारा निकलकर मोहिते को भिगो रहा था। वो निशब्द कटे पेड़ सा गिरा, फिर पर्दा हिला और उसके पीछे से पुलिस के शार्प शूटर पांडुरंग साटम ने बाहर कदम रखा। उसके चेहरे पर परम संतुष्टि के भाव थे। साटम अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज और पुलिस विभाग की शान था। मोहिते ने पहले ही उसे कमरे में पर्दे के पीछे बिठा रखा था, क्योंकि आज उसे खून खराबे की पूरी आशंका थी।
साटम,
कमिश्नर जब बोले तो उनकी आवाज में कोड़े जैसी फटकार थी,
मैंने तुम्हें से सिर्फ घायल करने को कहा था ना, इसकी सजा इसे कानून देता, तुमने इसकी आंख में गोली क्यों मारी?
सॉरी सर, हड़बड़ाहट में निशाना चूक गया। कमिश्नर ने आंखों से बरछी भाले बरसाते हुए उसे जाने का इशारा किया तो वो चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट लिए सैल्यूट करके विदा हो गया। जाते जाते छलावा के लिए एक भद्दी गाली बुदबुदाना नहीं भूला, जो कमिश्नर और मोहिते ने सुनकर भी अनसुनी कर दी। अब कमिश्नर ने खड़े होकर मोहिते से हाथ मिलाया और बोले,
वेल डन डीएसपी विक्रांत मोहिते, वेल डन।
पहले तो डीएसपी पुकारे जाने पर मोहिते अचकचा गया, पर जब उसे वस्तु स्थिति समझ में आई तो उसका चेहरा खिल उठा। कमिश्नर ने आगे कहा, प्रमोशन के साथ ही मैं तुम्हारा नाम राष्ट्रपति पदक के लिए भी प्रस्तावित करूंगा। विक्रांत मोहिते ने दोनों एड़ियां बजाकर अपने कमिश्नर सुबोध कुमार को जोरदार सैल्यूट दिया और घूमकर अपने ऑफिस की ओर चल दिया। आप सुन रहे थे कहानी छलावा और इसे लिखा था महेश दुबे ने। आप तक इसे पहुंचाया नैनी दीक्षित ने सिर्फ गाथा पर।